श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हैं और हमें विश्वास है कि आप सब आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से श्रेष्ठ गीत नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है प्रेम। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मधुर और पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों श्रेष्ठ गीत नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जो बाइबल के पुराने नियम की पुस्तक में से है। पिछले दो अध्ययनों में हमने इसके परिचय को देखा, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे सामर्थ्य और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से एक बार दिया, ताकि हम आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम श्रेष्ठ गीत की पुस्तक से अध्ययन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि हर एक जब आपके वचन को सुनते हैं, आपका वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए, इस पुस्तक की गंभीरता को समझने पाए और हर एक प्रकार की बुरी बातों से, व्यर्थ की चिंताओं से, शैतान के हर एक छल प्रपंच से आप उनकी रक्षा करें। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार अवस्था में हैं, निराश हैं, हताश हैं, या किसी प्रकार के कर्ज से दबे हुए हैं, या किसी प्रकार के ऐसे तनाव में हैं। पिताजी, आप उन सब की भी सहायता करें, अपनी शांति दे, ताकि वे आपसे और अधिक प्रेम कर सकें। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम श्रेष्ठ गीत नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, इससे पहले कि हम इस पुस्तक का अध्ययन आरंभ करें, इसकी इस सुंदर कहानी को देखें, तो यह एक अति महत्वपूर्ण बात है। मैंने इस पुस्तक की प्रस्तावना में इस विषय पर चर्चा की है। इस पुस्तक में 5 छोटे गीत हैं। वे एक ग्रामीण लड़की के अनुभव और अनुभव को प्रकट कर रहे हैं। वह पर्वतीय प्रदेश में रहने वाली सुनेमी लड़की है। वहां एक दिन एक चरवाहा आया और वह उससे प्रेम करने लगी। वह चरवाहा भी उससे प्रेम करने लगा था। वह जब जा रहा था, तब उसने इस लड़की से प्रतिज्ञा की कि वह फिर लौट कर आएगा, परंतु उसने लौटने में देर कर दी। एक दिन वहां घोषणा की गई कि राजा सुलेमान आया है और उससे मिलना चाहता है। उसे विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब वह उसकी उपस्थिति में लाई गई, तब उसे समझ में आया कि वही तो उसका चरवाहा था जिससे वह प्रेम करती थी। कुछ विचारकों का मानना है कि यह एक कहानी है जो टुकड़ों में कही गई है, परंतु मेरा विचार ऐसा नहीं है। मेरे विचार में दृश्यों में बदलाव आता है जो वास्तव में पुरानी स्मृतियों की यादें हैं। जो भी हो, हमारा ध्यान केंद्र तो इस पुस्तक का हम विश्वासियों के लिए संदेश है। यह कहानी विश्वासियों और प्रभु यीशु के बीच प्रेम का संबंध है। इसको ध्यान में रखते हुए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान का है। हम इसकी तुलना लोक गीत के साथ कर सकते हैं। इन गीतों को यहाँ संयोजित करके इसलिए रखा है कि हमें एक अनुपम महिमामय कहानी सुनने को मिले। कहानी सुनाना परमेश्वर की एक रीति थी कि अपनी प्रजा तक अपना संदेश पहुंचाए। इसमें वैराग का खंडन किया गया है, परंतु साथ ही इसमें विवाह की वाचा का अपमान तथा लालसा का विरोध है। इस नाटक में नायक मानसिक रोगी है, नायिका काम वासना से भरी है और पटकथा सरलता से पूर्ण हो ऐसा नहीं है, परंतु यह विवाह के प्रेम का एक सुंदर गीत है। तो हम देखते हैं उसके चुंबन। इससे पहले गीत में हम वर और वधु को एक अत्यधिक मधुर संबंधों में देखते हैं। आइए आप मेरे साथ पढ़िए श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 1 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, वह अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। उस युग में चुंबन शांति की वाचा होती थी। सुलेमान का अर्थ ही शांति है। वह शांति का राजकुमार था और यरूशलेम में राज्य करता था। यरूशलेम का अर्थ है शांति का नगर। यह सुनेमी लड़की शांति की पुत्री है। यहां चुंबन उस व्यक्तिगत घनिष्ठ संबंध का प्रतीक है जो प्रभु यीशु अपने लोगों के साथ रखता है। वह परमेश्वर के वचन के द्वारा अपना संदेश अपने लोगों तक पहुंचाता है। यही कारण है कि हमें परमेश्वर के वचन के अध्ययन की आवश्यकता है। वचन को कंठस्थ करने की आवश्यकता से अधिक हमें उससे व्यक्तिगत संबंध रखने की आवश्यकता है कि वह अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करे। वह अपने मुंह के चुंबन से मुझे चूमे। उसने आपके साथ और मेरे साथ शांति की बात कही है। वही तो है जो मनुष्य के मन में शांति लाता है। मेरे मित्रों, पुराने नियम में हमने मसीह के रूप देखे हैं। मूडी स्टुअर्ट ने लिखा है, मूसा और भविष्यद्वक्ता तो आए, हारून और याजक भी आए, और सबके बाद दाऊद और राजा लोग आए, परंतु अब उसे स्वयं आने दो। वह जो सच्चा भविष्यद्वक्ता है और अपने लोगों का याजक और राजा है। बर्नार्ड, जो मसीह के अति निकट था, कहता है, मैं मूसा को सुन नहीं सकता क्योंकि वह स्पष्ट नहीं कह पाता है। मैं यर्मिया को नहीं सुनता क्योंकि उसके होंठ अशुद्ध हैं। वह बच्चा ही तो है, वरन सब भविष्यद्वक्ता कहने योग्य नहीं है। जिसके बारे में वे सब कहते थे वही केवल वही कहे। जिसके पास सुनने को कान है और उसकी वाणी सुन चुका है, उसके क्रूस के लहू के द्वारा पापों की क्षमा की शांति, वह अगला कदम उठा सकता है। यदि आप मसीह यीशु के द्वारा मुक्ति पाकर परमेश्वर से प्रेम कर चुके हैं, तो वह प्रभु के चुंबन की याचना करता है। यह एक वाचा का चुंबन है, मसीह और विश्वासी के मध्य वाचा का। हम मुक्ति में उधार ही नहीं पाते, वरन स्वतंत्रता भी पाते हैं। पहला योहन्ना की पत्री 8 अध्याय उसके 36 पद में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। जी हाँ, यह कैसी स्वतंत्रता है? यह वह स्वतंत्रता है जो रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 1 पद में व्यक्त है। अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जी हाँ, यह समर्पण की स्वतंत्रता है जो हमें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के घनिष्ठ संबंधों में लाती है। क्या आप परमेश्वर की ऐसी संतान हैं? क्या आप डरते हैं कि उसके अनुग्रह को स्वीकार न करने पाए? वह चाहता है कि आप उसे ग्रहण करें। इफिसियों की पत्री में पौलुस लिखता है कि वह दया का धनी है और अनुग्रह का भी धनी है, और वह अपनी महिमा का धन हमारे साथ बांटना चाहता है। मेरे प्रियो, मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु यह अवश्य जानता हूं कि मुझे उसके अनुग्रह की आवश्यकता है, उसकी दया की आवश्यकता है। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 पद में वह निमंत्रण देता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह अग्नि परीक्षा है। यह शब्द के दिन का विश्राम नहीं है, यह 7ों दिन का विश्राम है, उसकी परिपूर्ण मुक्ति का विश्राम है। आगे मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 29 और 30 पद में प्रभु यीशु कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। उसका जुआ उठाना एक अद्भुत और महिमामय संबंध है। वही है जो आपके बोझ उठा लेता है। अरस्किन ने एक कविता लिखी, उसका मुख स्वर्ग का आनंद प्रकट करता है, उसके चुंबन स्वर्ग के हैं, क्षमा और आनंद प्रेम की प्रतिज्ञा और मुहर है। तो आइए हम देखते हैं उसका प्रेम। तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। उस युग में दाख मधु का अर्थ था इस संसार की सब सुख सुविधाएं। वह मन के सर्वोत्तम आनंद का प्रतीक थी। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 18 पद में पौलुस कहता है, दाखरस से मतवाले न बनो, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ओह, पवित्र आत्मा से भरना कि हम उस उत्साह का अनुभव पाएं, मसीह के होने के लिए उसकी सहभागिता के उन्माद और हर्षातिरेक से पूर्ण हो जाना है। मेरे मित्रों, मैं जो कह रहा हूं वह न तो आप और न ही मैं अधिक जानते हैं। हम कलीसिया में हैं, हम समर्पित विश्वासी होने की बात करते हैं क्योंकि हम दीमकों के समान व्यस्त रहते हैं। हमारा स्वभाव ऐसा होना है जैसा पत्रस ने लिखा है, पहला पत्रस की पत्री 1:8 में कहता है, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। हबक्कूक की पुस्तक 3:17-18 में लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें और न थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। मेरे प्रियो, क्या आप ऐसी दशा में हैं? अतः आश्चर्य नहीं कि वह कहता है, तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। मैं श्रद्धाहीन नहीं होना चाहता, परंतु पूछना चाहता हूं कि क्या आपको जीवन का आनंद प्राप्त होता है? यह आनंद का एक मार्ग है। दाखरस से आपको पीने की लत पड़ जाएगी। शराब कुछ समय के लिए शांति प्रदान करती है, परंतु वह पतन का मार्ग है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में आने दो, वह आपके मन में परमेश्वर का आनंद भर देगा। यह भी एक कारण है कि हमें पवित्र आत्मा से भरना है ताकि हम उसके चलाए चल सकें। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 1:3 में लिखा है, तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, इसलिए कुमारियां तुझ से प्रेम रखती हैं। प्रभु यीशु के जन्म पर उसे गंधरस की भेंट चढ़ाई गई थी। उसकी मृत्यु के बाद उसके मृतक देह पर गंधरस लगाया गया था। जन्म से मरण तक उसके संपूर्ण सांसारिक जीवन में इत्र की सुगंध व्याप्त थी। ओह, क्रूस पर उसकी मृत्यु के समय उसके प्रेम की सुगंध व्याप्त थी। हम आगे देखते हैं उसके आकर्षण की शक्ति। श्रेष्ठ गीत 1:4 में लिखा है, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे, राजा मुझे अपने महल में ले आया है, हम तुझ में मगन और आनंदित होंगे, हम दाख मधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे, वे ठीक ही तुझ से प्रेम रखती हैं। यह धर्मशास्त्र का एक अद्भुत अंश है। यह उस मनुष्य की अभिव्यक्ति है जो प्रभु से प्रेम करता है और उसके घनिष्ठ संबंध में बना रहता है। इससे यह भी प्रकट होता है कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच नहीं पाते हैं, वह बहुत ऊंची है। अतः हम कहते हैं, मुझे खींच ले। बोनर ने अपने प्रेम को इस प्रकार से व्यक्त किया है, मैं यीशु इमानुएल प्रभु मसीह के नाम से प्रेम करता हूं, उसका नाम हवा में इत्र की सुगंध सा सर्वत्र उड़ता रहता है। मेरे प्रियो, यीशु के नाम का अर्थ आपके लिए क्या है? यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपने उस अद्भुत संबंध का अनुभव नहीं पाया है, तो वधु की वाणी सुनकर प्रतिक्रिया दिखाएं, मुझे खींच ले। आप परमेश्वर की संतान हैं तो कहें कि मुझे खींच ले, उससे आपको उठाने दें और उस स्थान पर लाने दें जहां आप स्वयं नहीं पहुंच सकते। यह जान लीजिए कि आप स्वयं उस ऊंचे स्थान पर नहीं पहुंच सकते हैं। फ्रांसिस क्वारलेस ने इस विचार को अति उत्तम रीति से प्रस्तुत किया है। लट्ठे के समान उसे बोझ है, वह कीड़ा जो अज्ञात है और मरता नहीं, मुझ में उठने की इच्छा नहीं और न ही सामर्थ्य है, क्योंकि पानी में पड़ी कुल्हाड़ी क्या उसे उठाने वाले हाथ से निवेदन करेगी या स्वयं ऊपर आ जाएगी, क्या उसकी गहराई में सूखा किनारा होगा। पापी देह और लहू के लिए यह काम बहुत कठिन है कि भलाई के लिए थोड़ी सी भी सहायता करे। हे मेरे प्रभु, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूं। ओह, केवल वे जो परिश्रम करते हैं तेरी महिमा किसी ने नहीं देखी। हे प्रभु, जैसा मैं हूं, तेरी वाणी सुनने और तेरी बुलाहट को मानने का सामर्थ्य नहीं रखता। मुझे सोचने और सोचकर करने की शक्ति दे। ओह, मुझे उठा और मैं यत्न करूंगा, मुझे खींच ले और अपने तीन गुना बल से मुझे खींच ले। सामर्थ्य तो नहीं परंतु विरोध है। ओह, मुझे करने की शक्ति दे और तब अपनी सूची बता। परमेश्वर कहता है कि हमें उसका सामर्थ्य प्राप्त है। वह कहता है कि हमारी दुर्बलता में उसका सामर्थ्य सिद्ध होता है। वह हमारे मन की पुकार को जानता है कि मुझे खींच ले का वह उत्तर देगा। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मसीह की उपस्थिति में आना एक महान आनंद की बात है। वह मसीह की वास्तविकता को हम पर सिद्ध करता है। यूहन्ना के सुसमाचार 6 अध्याय उसके 44 पद में प्रभु यीशु ने कहा, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले। प्रभु यीशु ने अपनों से कहा था, यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय उसके 16 पद में जहां पर लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। जी हाँ, हम यह न सोचे कि हमने परमेश्वर की खोज की है। परमेश्वर ने हमें खोजा है, वह आज भी हमारी खोज में है। हमें तो बस इतना ही कहना है कि मुझे खींच ले, हे प्रभु मुझे खींच ले। हमें जीवन का जल पाने के लिए परमेश्वर के आत्मा की आवश्यकता है। यदि हम उस जीवन के जल को पिएंगे तो हमारे जीवन से जीवन जल की नदियां बहने लगेंगे, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। जब हम कहते हैं मुझे खींच ले, हे प्रभु मुझे खींच ले, तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम आलसी हैं या रुचि नहीं रखते, परंतु यह कि हम असहाय हैं। हमारी आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर शक्तिहीन है, दुर्बल है। हम उसके पीछे दौड़ना चाहते हैं परंतु पैर साथ नहीं देता। उसे हमें वह क्षमता, आत्मिक क्षमता देनी होगी, उसे हमें खींचना होगा। इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। और यशाया कहता है 40 अध्याय उसके 31 पद में, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम अपने हर एक पाप को दूर करके धीरज के साथ दौड़ें। और तब यशाया भी हमें इस बात का स्मरण दिलाता है कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं और वे दौड़ते हैं और श्रमित नहीं होते हैं। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि आपका जीवन किस प्रकार का जीवन है। क्या आज आप पाप में रहकर अपने जीवन की दौड़ दौड़ रहे हैं, या परमेश्वर के वचन के अनुसार कि पाप को छोड़कर परमेश्वर की ओर आप दौड़ रहे हैं? ताकि आप दौड़ें तो श्रमित ना हो, आप चलेंगे पर थकित ना होंगे। यदि आज आपके जीवन में किसी प्रकार का पाप है, यदि आप ऐसे पाप में जी रहे हैं और आप सोचते हैं कि कोई इसे नहीं जानता है, तो आज आप परमेश्वर के सम्मुख मान लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे सब अधर्म को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे माता पिता, भाई बहन और बच्चे, आइए आज हम परमेश्वर के वचन को सुने और उससे कहें कि प्रभु आप मुझे खींच ले, मैं इस दलदल में जीवन जीना नहीं चाहता हूं, मैं जीवन जीना नहीं चाहती हूं, आप मेरी सहायता करें। जी हाँ, जब आप उसे पुकारेंगे परमेश्वर अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे और आप देखेंगे कि आप उस दलदल से बाहर हैं और परमेश्वर की निकटता में उस असीम शांति और आनंद को प्राप्त करेंगे जो आप कभी भी आज तक प्राप्त नहीं किए हैं। क्या आप चाहते हैं कि उस प्रकार का प्रेम हो जो परमेश्वर आपके साथ करना चाहता है? यदि हाँ, तो आज आप निर्णय लें और प्रभु से मांगे और देखें कि वह आपकी अवश्य ही सहायता करेंगे। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे विश्वास है कि आप आज अपने जीवन में एक सही निर्णय लेंगे और परमेश्वर की संगति में बढ़ेंगे। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
दरख्तों के दरमियाँ एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियाँ एक सेब के पेड़ के समान, नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह, सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करूं मैं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं।